पूरे अस्पताल की सफाई तुम्हें करनी चाहिए। तुम इस तरह से एक ही रूम में क्या कर रहे थे? बोलो। और मेरे पिता कैसे हैं? बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझ पर हाथ उठाने की? समझते क्या हो तुम अपने आप को? ऐसे बोलकर डिंपल ध्रुव को घूरने लगी। ध्रुव ने अपना मास्क उतारा, लेकिन इससे पहले कि वो डिंपल को कुछ कह पाता, डॉक्टर वहां आ गए। बहुत बहुत मुबारक हो मिस डिंपल, आपके पिता खतरे से बाहर हैं। उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। कुछ घंटे बाद उन्हें होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल सकती हैं। ऐसा बोलकर डॉक्टर डिंपल को मुबारकबाद देने लगे, लेकिन तभी डिंपल चहकते हुए बोली, अच्छा लेकिन आपने तो बोला था कि ये सर्जरी सिर्फ स्पेशलिस्ट ध्रुव ही कर सकते हैं, लेकिन वो कब आए और आपने मुझे उनसे मिलवाया क्यों नहीं? अब सब डॉक्टर डिंपल को इस तरह से देख रहे थे मानो वो किसी बेवकूफ को देख रहे हों, क्योंकि ध्रुव उसकी आंखों के सामने खड़ा था। थोड़ी देर पहले ध्रुव ने ही उसे चाटा मारा था और वो उससे पूछ रही थी कि ध्रुव कौन है। तभी डॉक्टर ने डिंपल की ओर देखा और फिर बोले, ये आपके सामने खड़े हुए आपके दोस्त, यही ध्रुव स्पेशलिस्ट है। जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा, डिंपल की आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं, लेकिन ध्रुव ने डिंपल को एक लुक दिया और सीधा वहां से चला गया। फ्लैशबैक एंड। और आज ध्रुव डिंपल के बारे में सोच रहा था। वो लड़की बिल्कुल भी नहीं बदली थी। कहीं ना कहीं ध्रुव के मन में, उसके दिल के एक कोने में आज भी प्यार जिंदा था और वो उससे कहीं ना कहीं आज भी प्यार करता था। लेकिन आज ध्रुव सोच रहा था कि उसे इतनी बदतमीज लड़की से प्यार कैसे हो सकता है। डिंपल पहले तो ऐसी नहीं थी, लेकिन अब वो कितनी बदतमीज हो गई है। और ध्रुव अपने उस हाथ को देख रहा था, वो हाथ जिससे उसने डिंपल पर उठाया था। इसी सोच के साथ ध्रुव की कब आंख लग गई उसे एहसास नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर वो 25-26 साल का नवयुवक जो मंदिर में पूजा करने गया था और अपनी एक प्रार्थना मांग कर आया था, इस वक्त बैंगलोर के अपने एक बड़ी ही शानदार विला में बैठा हुआ था। उसके हाथों में एक बड़ी ही प्यारी छोटी सी बच्ची की तस्वीर थी। वो उसे ही देख रहा था और उसे देखते हुए बोल रहा था, बहुत जल्द मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा गोरी, बहुत जल्द मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। वहीं अविनाश रघुवंशी को इस तरह से बोलता हुआ देखकर उसकी सेक्रेटरी, जो उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर खड़ी हुई थी, वो उसे घूरने लगी थी। उसकी सेक्रेटरी एंजल डिसूजा थी, जो अविनाश रघुवंशी के साथ अमेरिका में ही रहा करती थी। अविनाश रघुवंशी अमेरिका से इंडिया गोरी को ढूंढने के लिए आया था और वो उसे हर हाल में ढूंढना चाहता था। वहीं एंजल अब घूरकर अविनाश को देख रही थी और साथ ही साथ उसे गोरी से बेहद चिढ़ हो रही थी कि आखिरकार उसका बॉस क्यों पागलों की तरह इस लड़की को ढूंढ रहा है, क्योंकि एंजल ने सिर्फ अविनाश की पर्सनैलिटी देखकर उसके ऑफिस को ज्वाइन किया था। वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी थी और वो अविनाश के दिन रात ख्वाब सजाने लगी थी। वो अविनाश से बेहद प्यार करने लगी थी और हर हाल में उसे पाना चाहती थी। लेकिन जब से उसे इस बात के बारे में पता चला था कि उसका बॉस डेस्परेटली सिर्फ एक लड़की को ढूंढ रहा है, तो ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसे रह रहकर उस अनजान लड़की से चिढ़ हो रही थी जिसकी फोटो इस वक्त अविनाश रघुवंशी देख रहा था। और वो सेक्रेटरी जिसका नाम एंजल था, वो किलकिलाता अपने कमरे में चली गई थी। एंजल पिछले 6 सालों से अविनाश रघुवंशी के साथ काम कर रही थी। ऐसा नहीं था कि एंजल की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, ऐसा कुछ नहीं था। एंजल ने पहली बार अविनाश रघुवंशी की फोटो वहां के पेपर्स में छपी देखी थी, तभी से वो उसे अपना दिल दे बैठी थी और उसके करीब रहने के लिए वो उसकी सेक्रेटरी बन गई थी। लेकिन 6 सालों में एक बार भी अविनाश रघुवंशी ने एंजल को ऐसा कोई संकेत नहीं दिया था मानो वो उससे प्यार करता हो। लेकिन जब से एंजल अविनाश रघुवंशी की सेक्रेटरी बनी थी, तब से वो उसके आसपास ही रहना पसंद करती थी। लेकिन उसे ये पता चल चुका था कि अविनाश रघुवंशी डेस्परेटली किसी को ढूंढ रहा है और उसी को ढूंढने के लिए पहली बार वो अभी इंडिया आया था और उसके सेक्रेटरी होने के नाते एंजल को भी उसके साथ आना पड़ा था। वेल, कमरे में जाकर एंजल की आंखों से कुछ आंसू आ गए थे और मन ही मन में वो बोली थी, न जाने कौन है वो लड़की जिसके पीछे उसका सपनों का राजकुमार इतना ज्यादा पागल है। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया पूरी रात आस्था के पेट पर हाथ फेरता हुआ उसे किस करता हुआ सो चुका था। और जैसे ही अगली सुबह आस्था की आंखें खुली, उसने देखा अरमान का एक हाथ आस्था के पेट पर था और अरमान उसी तरह से उसके पेट पर हाथ रखे वहीं बराबर में सिर रखे हुए सोया हुआ था। आस्था हैरान थी कि अरमान को क्या हो गया है, वो इस तरह से अजीब सा क्यों सोया हुआ है। तभी आस्था उठी और उठकर उसने अच्छे से अरमान की तरफ देखा। अरमान ने अपना हाथ हल्का सा अपने हाथ पर से हटा दिया और कुछ पल उसे देखने के बाद वो बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद आस्था जल्दी ही नहाकर बाथरूम से निकली और उसने फटाफट से कपड़े पहने। उसने एक नज़र सोते हुए अरमान की ओर देखा और कमरे से बाहर निकल गई। आस्था सीधा नानी के कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन नानी उस वक्त दादाजी के साथ हॉल में बैठी हुई सुबह की चाय पी रही थी। उन दोनों के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, स्पेशली दादाजी के चेहरे पर। हालांकि नानी माँ कुछ उलझी हुई सी थी, लेकिन दादाजी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और वो मुस्कुराते हुए आज बड़े ही खुश हो रहे थे। साथ ही साथ रश्मि और मारिया दोनों किचन में लगी हुई थी, क्योंकि नानी माँ ने रश्मि और मारिया को शादी की पहली रसोई बनाने के लिए किचन में भेज दिया था। मारिया का किचन में जाने का कोई खास इरादा नहीं था और मारिया ने साफ साफ नानी माँ से मना भी कर दिया था कि वो कुछ बनाना नहीं जानती और ना ही वो किचन में जाना चाहती है। तब नानी माँ ने मारिया की ओर देखकर कहा, ठीक है बेटा, आप कुछ मत बनाओ, लेकिन आप रश्मि बेटी की मदद तो कर सकती हो ना। रश्मि को तो किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं थी, वो खुद बहुत अच्छा खाना बनाना जानती थी। लेकिन फिलहाल नानी के कहने पर मारिया किचन में चली गई थी और रश्मि की मदद करने लगी थी। राधिका और रौनक भी उनके साथ जाकर मदद करना चाहती थी, लेकिन नानी माँ ने उन्हें रोक दिया था और वो भी दादाजी और नानी माँ के आसपास ही बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। कहीं ना कहीं राधिका के दिल में खालीपन था, लेकिन वो अपना खालीपन किसी से कह भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद ध्रुव, आहन, सुमित, आकाश सबके सब दादाजी और नानी माँ के साथ हॉल में आकर बैठ गए। थे। सभी एकदम फ्रेश और खिले खिले लग रहे थे, क्योंकि सबकी जिंदगी में ये बड़े ही खुशी का मोमेंट था कि आस्था माँ बनने वाली है। तभी आहन ने ध्रुव की ओर देखकर बोला, भाई मैं तो अब शॉपिंग पे जाऊंगा। ध्रुव हैरानी से आहन की ओर देखकर बोला, लेकिन अभी तो तूने आकाश भाई की शादी में ढेर सारी शॉपिंग की है, तो फिर से तुझे शॉपिंग पे क्यों जाना है? तभी आहन बोला, क्या आपने सुना नहीं डॉक्टर ने कल क्या कहा? मुझसे भी छोटा घर में मेहमान आने वाला है, तो क्या मैं उसके लिए शॉपिंग नहीं करूंगा? और मेरा वो इकलौता भतीजा या भतीजी होगी? अरे मैं तो इतने सारे गिफ्ट्स खरीदूंगा, इतने सारे सामान खरीदूंगा, और वो जब तक इस दुनिया में नहीं आएगा तब तक मैं कुछ ना कुछ खरीदता ही रहूंगा, और मैं आज से ही शुरुआत कर दूंगा। जैसे ही आहन ने ये कहा, ध्रुव बोला, ये तो तू ठीक कह रहा है, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। ठीक है, एक काम कर, मैं भी तुझे ज्वाइन करता हूँ, आखिरकार मैं भी चाचा बनने वाला हूँ, मैं भी सब खरीदूंगा। तभी दोनों को इस तरह से झगड़ते हुए देखने लगे थे, क्योंकि आहन बोला था कि वो पहले एक एक कार और बाइक खरीदेगा। तब ध्रुव से बोला,
अरे तू पागल हो गया, छोटे से बच्चे के लिए बाइक और कार का क्या काम? तभी आहन बोला, अरे मेरा भतीजा होगा वो, तुम देखना कितना ज्यादा टैलेंटेड होगा, आते ही मुझसे मांगेगा, चाचू मुझे कार चलानी है, चाचू मुझे बाइक चलानी है, तो फिर मैं उसे क्या जवाब दूंगा? हाँ, इसीलिए मैं पहले से ही उसके लिए खरीद कर रखूंगा। जैसे ही आहन ने ये कहा, ध्रुव ने अपने माथे पर हाथ मार लिया था और वो बोला, भला एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, एक दिन का बच्चा, तुमसे आते ही गाड़ी और कार मांगेगा? अरे उसको बोलने में 2.5 से 3 साल लगेंगे, समझे तुम? तुम और वो दोनों अब इसी बात को लेकर झगड़ने लगे थे, क्योंकि आहन कह रहा था कि भतीजा आएगा और वो उसी की तरह रेसर बनेगा, उसे वो गाड़ी चलाना सिखाएगा, साथ ही साथ उसे बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चला करेगा। लेकिन ध्रुव बोल रहा था कि लड़की आएगी, यानी भतीजी आएगी, जो कि डॉक्टर बनेगी, और ध्रुव उसे बहुत बड़ी डॉक्टर बनाएगा। तो इसी तरह से दोनों के बीच अब आर्ग्यूमेंट होने लगा था। वहीं आस्था, जो कि नानी से डेस्परेटली मिलना चाहती थी, अकेले में कुछ बातें करना चाहती थी, अभी इस तरह से उन सबकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर कुछ हैरानी के भाव आ गए थे। अगले ही पल उसकी आंखें नम भी हो गई थीं। तभी ध्रुव और आहन की बचकानी बातें सुनकर राधिका, रौनक और बाकी सबके चेहरे पर मुस्कान थी। तभी सुमित राधिका की ओर घूर कर देखने लगा, मानो उसे राधिका का हंसना बिल्कुल भी पसंद न आया हो। तभी रौनक की नज़र आस्था पर गई और वो चहकते हुए बोली, अरे आस्था तुम आओ ना, प्लीज आओ। ऐसा बोलकर रौनक आस्था की ओर देखने लगी और आस्था अब ना चाहते हुए भी उनके पास आकर बैठ गई। तभी आहन और ध्रुव भी आस्था के पास जाकर बैठ गए और बोले, भाभी आप ठीक तो है ना? भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जानती हैं आपने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। रियली भाभी, यू आर सो स्वीट, यू आर सो स्वीट भाभी, देखना आपको तो बेटा ही होगा। तब ध्रुव तुरंत बोल पड़ा, नहीं आस्था भाभी, नहीं 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 भाभी, देखना बेटी ही होगी और देखना वो कितनी बड़ी डॉक्टर बनेगी। तभी आहन बोलो, नहीं मैंने कहा ना बेटा होगा, देखना वो कितना बड़ा चैंपियन बनेगा, उसे मैं बहुत बड़ा चैंपियन बनाऊंगा और वो बिल्कुल मुझ पर जाएगा। ऐसा सब बोलकर वो दोनों एक बार फिर झगड़ा करने लगे। वहीं आस्था उनकी बातों से इरिटेट भी हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इतना खुश देखकर मुस्कुरा भी रही थी। फिर उसने एक नज़र नानी माँ की ओर देखा, नानी माँ ने भी आस्था की आंखों का खालीपन देख लिया था, क्योंकि आस्था के कानों में अभी तक नानी माँ की कही हुई बात ही गूंज रही थी कि तेरे माता पिता की मौत तेरी वजह से हुई है। तो आस्था ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और जल्दी ही वो सीधा नानी माँ के पास उठकर चली गई और बोली, नानी माँ हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जैसे ही आस्था ने बोला, सब हैरान हो गए थे, क्योंकि आस्था बिल्कुल सीरियस वे में थी। आस्था जो कि हमेशा चहकती रहती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, उसको इस तरह से सीरियस देखकर और उसकी इस तरह की सीरियस वाली बातें सुनकर सभी हैरान हो रहे थे। लेकिन फिलहाल नानी माँ हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे, तो फिलहाल मेरी बात सुनो, फटाफट से बैठो। रश्मि बेटी से मैंने तुम्हारे लिए कुछ पौष्टिक नाश्ता बनाने के लिए बोला है, वो बस लेकर आती ही होगी, और तुम्हें सुबह का नाश्ता बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, समझी तुम? और तुम्हें अपने खाने पीने का ज्यादा ध्यान रखना है और हर एक घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाना है, ओके? ऐसा बोलकर नानी माँ आस्था को संभालने लगी। लेकिन तभी अचानक आस्था का दिल अजीब सा होने लगा था, उसके मुंह में पानी पानी आ रहा था, मतलब कि उसे मितली यानी उल्टी जैसा मन होने लगा था, और आस्था तुरंत उल्टी करने के लिए भागी थी। वहीं आस्था जैसे ही बाथरूम में उल्टी कर रही थी, वो नीचे ही हॉल में जो एक अलग से वॉशरूम बना हुआ था उसी में चली गई थी और वो उल्टी करने लगी थी। तभी उसे अपनी कमर के पीछे किसी के हाथ महसूस हुए थे, लेकिन आस्था ने बिना ये देखे कि ये हाथ अरमान के हैं, आस्था ने अपनी कमर पर से अरमान के हाथों को हटा दिए थे। तो ये बात अरमान को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और आस्था सीधा नानी माँ के कमरे में चली गई थी। वहीं नानी माँ, जो कि आस्था को संभालने के लिए उसके पीछे पीछे आ गई थी और वो अरमान का डार्क चेहरा देख चुकी थी, तुरंत बात बनाते हुए बोली, अरे बेटा वो पहली बार सब कुछ चीज फेस कर रही है और इस तरह से उसे उल्टियाँ लगती रहेंगी कुछ दिन तक, जब तक बच्चे में जान नहीं पड़ जाती। लेकिन फिलहाल आप लोग परेशान मत होइए, मैं उससे मिलकर आती हूँ, ठीक है? और बेटा बार बार उसकी किसी भी बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, क्योंकि प्रेगनेंसी में इस तरह से मूड स्विंग होते रहते हैं,
ऐसा बोलकर नानी माँ अरमान को समझाने लगी थी। वहीं अरमान तो अभी भी अपने उन हाथों को देख रहा था जिन हाथों को आस्था ने अपनी कमर पर से हटाया था।